पृष्ठ संख्या 28। अंतः संगीत मौन मद हो जाए, भाषा मूकता की आड़ में, मन सहजता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाए। निराला की रचनात्मकता का श्रेष्ठतम प्रतिफलन गद्य और कविता दोनों ही क्षेत्रों में अपने निजत्व की समीपता, पहचान की अभिव्यक्ति में हुआ है। यह एक प्रकार का सघनतम आत्म साक्षात्कार है। कविता या रचना को अपने निजी जीवन बिंब में घुला देने का सफल प्रयास। उनकी काव्य रचना का अधिकांश भाग इसी आत्म साक्षात्कार अथवा निजत्व की समीपता पहचान का परिणाम है। अपने जीवन बिंब और काव्य बिंब को एकम एक कर देने के कारण ही उनके काव्य में वह गहराई आ सकी है जो धीरे धीरे परत दर परत खुलती है और अपनी गरिमा, पवित्रता और भावोच्छलता से पाठक को आह्लादित करती हुई उसके मन पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ जाती है। उच्छ्वल पावनता, आत्मसमर्पण, सुख, आत्मतोष, गरिमामयता, अवसाद, खिन्नता और जर्जरपन से होकर तिरोहित होते हुए शरणागति की पावनतम इच्छा, यह सब कुछ निजत्व की इसी समीपतम पहचान का प्रतिफल है। इस रूप में निराला हमारे निजी क्षणों के निजी प्राइवेट कवि बन जाते हैं, जिनकी अभिव्यक्तियों पर हम सुख दुख के घने क्षणों में भरोसा कर सकते हैं। किसी भी कवि की यह श्रेष्ठतम उपलब्धि और अंतिम सफलता कही जा सकती है। निजत्व की यह समीपतम पहचान अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके गीतों में अभिव्यक्त हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी काव्य रचना का शेष भाग इस पहचान से रिक्त है। आत्म साक्षात्कार का तिरोभाव उनकी कविता में कहीं नहीं हुआ है। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि किस तरह उनकी लंबी कथात्मक कविताओं, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति आदि में भी उनका आत्म साक्षात्कार या निजत्व की समीपतम पहचान ही अभिव्यक्त हुई है। राष्ट्रीय उद्बोधन की कविताओं में भी उनकी उच्छल राष्ट्रभक्ति ही व्यक्त हुई है और काव्य आभिजात्य पृष्ठ संख्या 29 से मुक्ति के प्रयास में लिखी गई कविताएं भी इस विशेषता से रहित नहीं है। इस तरह निजत्व की समीपतम पहचान की अभिव्यक्ति ही निराला की काव्य रचना का वह केंद्रीय भाव है जिसके इर्द गिर्द वह जमीन भर चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, इसकी सघनतम अभिव्यक्ति उनके गीतों में ही हुई है। इन गीतों में भी अनेक रंग हैं। अध्यात्म की सुविधा के लिए मैंने निराला के इन गीतों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। एक, प्रेम संबंधी गीत। दो, आत्म साक्षात्कार के गीत। तीन, मृत्यु संबंधी गीत। चार, ऋतु गीत। पाँच, प्रपत्ति भाव के गीत। स्पष्ट है कि यह विभाजन विषयगत है। शिल्प और भाषिक संरचना तथा गीत तत्व के आधार पर उनके गीतों का विभाजन कर सकना लगभग असंभव है, क्योंकि वह विशेषताएं समान रूप से उपर्युक्त सभी तरह के गीतों में पाई जाती हैं। इसलिए मुझे उस तरह का विभाजन अनुचित लगा। यह विषयगत विभाजन भी बहुत सूक्ष्म नहीं है। यह सिर्फ गीतों की व्याख्या संबंधी सुविधा के लिए किया गया है। इसे किसी के द्वारा अंतिम मान लेना भी अनुचित होगा, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट विभाजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि निराला ने इस तरह के शीर्षक या विषय अपने मन में रखकर तब इन गीतों की रचना की। इसीलिए इस विषयगत विभाजन के बावजूद मैंने पाया कि एक एक वर्ग के गीतों को दूसरे वर्ग के गीतों से पूरी तरह विषयगत धरातल पर भी अलग नहीं किया जा सकता। अक्सर एक प्रेम गीत आत्म साक्षात्कार की सघन भावभूमि से शुरू होता है, या कोई ऋतु गीत, अभी न होगा मेरा अंत, मृत्यु की तीखी पृष्ठ अनुभूति पर निर्मित होता हुआ दिखाई देता है। ऋतु या प्रेम या आत्म साक्षात्कार का सघन धरातल जगह जगह शरणागति के गीतों में भी मृत्यु की सघन अनुभूति के साथ उभरता है। इसलिए मैंने कहा कि यह विभाजन सिर्फ अपने अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने किया है। इन सभी तरह के गीतों में निजत्व की समीपता पहचान हर जगह अत्यंत सूक्ष्म ढंग से संगुम्फित है। इनमें से ऋतु गीतों और प्रपत्ति भाव के गीतों पर हम अलग अध्यायों में विचार करेंगे, क्योंकि ये गीत निराला की काव्य रचना के महत्वपूर्ण अंग हैं और पृथक तथा विशद व्याख्या की मांग करते हैं। आधुनिक युग में ऋतुओं का ऐसा सघन आकर्षण किसी दूसरे हिंदी कवि में नहीं पाया जाता। इसी तरह निराला जैसे प्रयोगशील अखंड और विद्रोही व्यक्ति तथा कवि के लिए अंततः शरणागति की खोज ऊपर से देखने पर काफी अजूबा लगती है, लेकिन उसका अपना तर्क है। इन्हीं कारणों से उनके इन दोनों तरह के पृष्ठ संख्या 30 गीतों पर हम अलग से विचार करेंगे। इस अध्याय में हमारे अध्ययन का विषय सिर्फ पहले तीन विभाजन होंगे। एक, प्रेम संबंधी गीत। निराला के प्रेम संबंधी गीतों के कई रंग हैं, बल्कि रंगों की कई कई परतें हैं जो तह दर तह खुलती हैं, लेकिन उनके प्रेम गीतों का केंद्रीय भाव सुख और आत्मतोष की तन्मय उच्छल अनुभूति है। इसी को उन्होंने अनेक रूपों में अलग अलग गीतों में अभिव्यक्त किया है। इन सारे गीतों को लगातार पढ़ते रहने पर यह लगता है कि हम किसी पहाड़ी नदी की निर्मल प्रखर पारदर्शी जलधारा के बीच खड़े हैं और हमारे चारों ओर वही स्वच्छ पावन जलधारा लगातार लगातार प्रवाहित हो रही है। उसके स्रोत और प्रवाह की अनवरतता की यह अनुभूति कभी खत्म नहीं होती। सुख और आत्मतोष की इस उच्छल अनुभूति की अनवरतता ही निराला के प्रेम गीतों में व्यक्त हुई है। इसीलिए उनके प्रेम संबंधी गीतों में एक सहज एकतानता हर जगह विद्यमान है, यानी कि उनके ये गीत खंड खंड एक दूसरे से अलग अलग अनुभूतियाँ नहीं हैं, बल्कि एक ही संगठित अनुभूति का एक अनवरत प्रवाह है जो प्रत्येक गीत में नए नए बिंबों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। अर्थात अनुभव की एक समग्रता और विराट अखंडता को ही बार बार निराला व्यक्त करते हैं। उनके भीतर की यह अनुभव समृद्धि कभी रिक्त होती नहीं दिखाई देती। अपने सुख, अपनी तन्मयता, अपने पावन आत्मतोष को बार बार व्यक्त करके भी निराला जैसे पूरी तरह चूक नहीं जाते। वह गंगोत्री बार बार बढ़ आती है। रस का वह अतल स्रोत न जाने कहाँ से बार बार उछल आता है और बार बार उन्हें आंदोलित करता है। वे फिर उसे अभिव्यक्त करके मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं दिखाई देता। इसीलिए निराला अंततः मौन मधु हो जाए जैसी प्रार्थना पर लौट आते हैं। इसीलिए सांध्य काकली में आकर उन्हें यह अनुभव होता रहता है कि अंततः वे वह सब कुछ व्यक्त नहीं कर पाए। अंततः अपने मन की अनंत निरामयता को व्यक्त करके वह मुक्त नहीं हुए। अभिव्यक्ति की वह अनंत व्याकुलता उन्हें फिर बार बार घेरती है। अंततः उनका जी नहीं भरा। इस नजरिए से देखें तो निराला के सारे गीत एक ही लंबी कविता के खंड रूप हैं। यहाँ पर आकर निराला रचना प्रक्रिया के लिहाज से महादेवी के निकट लगने लगते हैं। तन्मयता की एक ही अनुभूति को बार बार अनेक स्वर छवियों में उकेरने का यही प्रयत्न महादेवी में भी दिखाई देता है। दरअसल महादेवी ने एक ही कविता बार बार लिखने की कोशिश की है। उनकी मौलिकता वहाँ झलक मारती है जहाँ एक ही अनुभूति बार बार कही जाकर भी बासी नहीं पड़ती, पुनरावृत्ति नहीं मालूम पड़ती। हर बार और अधिक गरिमा से फूटती है, हर बार नित नई बनती जाती है। निराला के इन प्रेम गीतों के साथ भी ऐसा ही है। पृष्ठ संख्या 31। एक ही अनुभूति सुख और आत्मतोष की तन्मयता बार बार व्यक्त होकर भी कहीं पर भी नीरस या पुनरावृत्ति नहीं लगती। इस संबंध में एक बात और ध्यान देने लायक है। यह कुछ कुछ अजीब है। उनका असंतोष आत्मतोष को पूर्णतया व्यक्त न कर पाने का असंतोष है। इसके अलावा एक दूसरी बात और भी है, अपनी सारी बाहरी व्यक्तिगत टूटन के बावजूद निराला ने अपनी कविता के अधिकांश हिस्से में इस टूटन को हावी नहीं होने दिया है। यद्यपि पराजय और जर्जरपन की अनुभूति उन्हें बार बार घेरती है और कई बार वह इसमें डूबते हुए भी नजर आते हैं, फिर भी वह इस घटाटोप को फाड़ कर बाहर निकल आते हैं। इसीलिए अगर समाहार के तौर पर कहें तो कह सकते हैं कि निराला के संपूर्ण काव्य का प्रमुख स्वर नैराश्यजनक नहीं है। उनका व्यक्तिगत जीवन चाहे जितना बड़ा दुखांत हो, उनका काव्य बिंब अभूतपूर्व और कुछ कुछ चमत्कारिक ढंग से इस दुखांत से लगभग मुक्त है। उनकी कविता का केंद्रीय भाव सुख, पावनता, आत्मतोष, आशीष और अंततः निष्कामता की चरम अनुभूति है। आश्चर्यजनक यह है कि यह कहीं से भी कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि जीवन तो उन्होंने दुखांत जिया हो और जानबूझकर एक कलाकार की जिम्मेदारी महसूस करके उन्होंने सुख, आत्मतोष, पावनता और निष्कामता का एक कृत्रिम और निजी धरातल पर सर्वथा अनजिया काव्य रचा हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। फिर यह सवाल उठता है कि यह कैसे संभव हुआ। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, उनका काव्य ही उनका जीवन बिंब है और उनका जीवन ही उनका काव्य बिंब। उसमें कहीं कोई खाई, विरोधाभास या अंतराल नहीं है। फिर यह ऊपरी तह पर झलकने वाला विरोधाभास क्या है? दरअसल जैसा कि मैंने कहा, अपनी सांसारिक टूटन, नैराश्य और बाहरी हमलावर धक्कों से उन्होंने अपने भीतर के गहरे समृद्ध स्रोत को कभी भी खंडित होने नहीं दिया। इससे लगता है कि निराला का रचना जीवन कहीं से भी अपने भीतरी धरातल पर विघटित और खंडित नहीं हुआ है। इस बाहरी हमले से सुरक्षित कहीं अतल गहराई में एक निरंतर प्रवाहित जीवन स्रोत है, एक अदम्य जिजीविषा है जो कभी टूटती नहीं। इसी जिजीविषा को, इसी रस स्रोत को समझने के बाद निराला के प्रेम गीतों में अभिव्यक्त इस तन्मय सुख और पावन, उच्छल आत्मतोष और आशीषपूर्ण निष्कामता की अनुभूति को समझा जा सकता है। निराला का सारा जीवन एक विरही कवि बनने के लिए अच्छा खासा मसाला है, लेकिन अपने प्रेम गीतों में वह मुख्यतः विरह या दग्ध मानसिकता के कवि नहीं हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि यही हाल उनके ऋतु गीतों का भी है। ऋतु के माध्यम से भी उन्होंने मुख्यतः अपने आत्म संताप को नहीं व्यक्त किया है, बल्कि उसे जीवनदायी स्रोत के रूप में ही ज्यादातर चित्रित किया है। जब जब उन्हें पृष्ठ संख्या 32 आत्म जर्जरता की अनुभूति घेरती है, वह उसके प्रभाव को सहज ढंग से स्वीकारते हुए उसके घटाटोप को फाड़ देते हैं। आत्म संताप और आत्म जर्जरता से मुक्ति पाने का निराला का यह बिल्कुल अपना ढंग है, यानी कि वह उसे नकारते नहीं, उस पर किसी विचार दर्शन का मुलम्मा चढ़ाकर अपना निजी पक्ष भी रविंद्रनाथ टैगोर की तरह मजबूत नहीं करते। पंत की तरह उस मना स्थिति को वह दुरदुराते भी नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं वह उनका अपना ही जीवन बिंब है, बल्कि उसे सहज ढंग से स्वीकार करके उससे मुक्त हो जाते हैं।